ये आकाशवाणी है। अब आप अंजलि से समाचार सुनिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूर कर चुकी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने विधेयक को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा।
सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल।
विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये विधेयक संविधान के खिलाफ है और सरकार कई मुद्दों पर अपनी विफलता छिपाने के लिए ये विधेयक लाई है। इस बारे में ताजा जानकारी के लिए अपने संवाददाता से बात करते हैं।
जी हेलो,
अनुपम मिश्र।
जी अंजलि, अब तक सदन में दोपहर 12 बजे से करीबन 10 घंटे से अधिक समय चर्चा हो चुका है, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय की धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और उचित प्रबंधन लाना है। हालांकि विपक्षी नेताओं ने सरकार पर एक खास अल्पसंख्यक समूह को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सदन में इस महत्वपूर्ण कानून पर विस्तृत चर्चा हुई हो रही है और जहां सदस्यों को अपने राय रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। अभी लोकसभा अध्यक्ष ने भी सदन की कार्रवाई बिल के पारित होने तक बढ़ा दी है। इसके बाद कुछ देर बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू इस चर्चा का उत्तर देंगे और सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देंगे। मंत्री के जवाब के बाद सदन में विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा। चूंकि अधिकांश विपक्षी दल इस कानून के विरोध कर रहे हैं, इसलिए ऐसी संभावना है कि विपक्षी नेताओं द्वारा पेश किए गए विभिन्न संशोधनों पर मत विभाजन की मांग की जाए। इस स्थिति में सदन में संशोधनों पर मतदान हो सकता है। हालांकि सत्ताधारी एनडीए के सभी दल एकजुट हैं, इसलिए सदन में सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित।
धन्यवाद अनुपम। बिहार और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों, संगठन और लोग वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत कर रहे हैं। बिहार में पसमांदा मुस्लिम समाज के संयोजक डॉ. फिरोज मंसूरी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह विधेयक पसमांदा मुसलमानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हरियाणा हज कमेटी के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर खुर्शीद आलम ने कहा कि वक्फ बिल से सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो रही है जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। संसद ने आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा में आज इसे स्वीकृति दी गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य भारत में विदेशी लोगों के आव्रजन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करना और आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री कल बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंग तारन शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनूर कुमार दिसानायक के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल से पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होगी। आईपीएल 2020 क्रिकेट में बेंगलुरु में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को दिए गए 170 रन के लक्ष्य के जवाब में अंतिम समाचार मिलने पर 7वें ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही इस समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।